हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 18वें अध्याय का ओवरव्यू करेंगे, 18वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में खास करके भगवान ने अर्जुन को बहुत सारे सब्जेक्ट बताए हैं, बहुत सारे चीज़ें बताई हैं। हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कुछ 78 इसमें श्लोक हैं, तो एक एक श्लोक लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे समय में, समय के अंतर्गत। तो हम कोशिश करेंगे जो भी टॉपिक्स भगवान कृष्ण ने कवर किए हैं इस चैप्टर में, हम उनको लें और उनको डिस्कस करें। तो भगवान कृष्ण ने ऑलरेडी कर्म, ज्ञान और भक्ति के योग के बारे में पहले ही बताया हुआ है, और अभी इस अध्याय में भगवान फिर से उनको सार रूप में प्रस्तुत करते हैं 18वें अध्याय में। तो पहले थोड़ा सा हम 17वें अध्याय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 17वां अध्याय जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुना था, उसमें खास करके यज्ञ, दान, तप और आहार के बारे में बताया गया था। तो अभी पहला जो उसका पार्ट था, उसमें गुणों के अंतर्गत श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद गुणों के अंतर्गत श्रद्धा के लक्षण क्या होते हैं हमने जाने थे, और किस तरीके से कोई व्यक्ति यज्ञ, तप और दान में दोषों से मुक्त हो सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो अभी भगवान कृष्ण और बताने जा रहे हैं। तो 18वां अध्याय पहला पार्ट है 1 से 12, जिसमें भगवान कर्म योग का सारांश बताएंगे, समरी ऑफ कर्म योगा। फिर 13वें अध्याय से लेकर 40 नंबर श्लोक तक, 13वें श्लोक से 40 नंबर श्लोक तक भगवान प्रकृति के गुण और ज्ञान योग के बारे में बताएंगे। फिर 18 अध्याय का 41 से 54 में भगवान जो है कर्मयोग द्वारा शुद्धिकरण और ज्ञान योग द्वारा शुद्धिकरण, उनके बारे में बताएंगे। 55 से 66 नंबर श्लोक में हमें पता चलेगा कि कृष्ण प्रेम हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, और उसके बाद भगवद गीता का समापन होगा जो कि 67 नंबर श्लोक से लेकर 78 नंबर श्लोक तक होगा। तो ये कुछ व्यू है जिसके द्वारा आज हम चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। तो सबसे पहले कर्मयोग का सारांश के बारे में चर्चा करते हैं। तो अर्जुन इस अध्याय के शुरुआत में कुछ जानना चाहते हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि ये त्याग और संन्यास, ये इनका उद्देश्य क्या होता है। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, अर्जुन उवाच, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। बोलते मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिसूदन, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। त्याग और संन्यास, ये दो शब्द जो है यहाँ पे यूज किए गए हैं। एक त्याग होता है, एक संन्यास होता है। तो अभी अर्जुन जानना चाहता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है इन दोनों में। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवियो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। त्याग मतलब होता है कर्म फलों को त्यागना, कर्म करना लेकिन कर्म के फलों को त्याग देना। लेकिन संन्यास का अर्थ होता है कर्म के फल को तो त्यागना, साथ साथ में कर्म को भी त्याग देना। ये अंतर भगवान जो है बताते हैं। तो संन्यास मतलब सत के लिए न्यास, सत मतलब होता है परम सत्य, और न्यास मतलब सब कुछ त्याग देना, ये संन्यास कहलाता है। तो संन्यास में व्यक्ति कर्म के फलों को भी त्यागता है और साथ साथ में कर्म को भी त्याग देता है। जब कोई व्यक्ति वो कुछ कर्म ही नहीं करता तो इस प्रकार वो निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय होने के बाद सोचता है चलो हिमालय चलते हैं, और वहां पर ध्यान लगाते चल के हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि करके वो ध्यान लगाने का प्रयास करता है। लेकिन जो लोग इस संसार में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन वो जो कर्म है कर्म के फलों को त्याग देते हैं, भगवान को दे देते हैं, वो त्याग कहलाता है। तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक नित्य कर्म होते हैं, काम्य कर्म होते हैं। नित्य कर्म का अर्थ होता है प्रमाणित दैनिक निर्धारित कर्तव्य। जैसे ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो संध्या वंदन करते हैं, त्रिसंध्या, तीन संध्याएं दिन में होती हैं, उनमें वो वंदन करते हैं, ये नित्य कर्म है। और एक होता है काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब कि किसी व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के लिए कर्म कराया जाता है। जैसे कि कोई यज्ञ करता है जिसमें पुत्र कामिष्ठी यज्ञ होता है, कि पुत्र की इच्छा के लिए कोई यज्ञ करता है। तो ये दो तरीके के होते हैं। अभी संन्यास विरुद्ध त्याग क्या है? संन्यास में व्यक्ति काम्य कर्म को त्याग देता है और केवल नित्य कर्म ही करता है। ठीक है, नित्य कर्म जो उसके संध्या वंदन है वो सब करता है, लेकिन काम्य कर्मों को त्याग देता है। बहुत अच्छा। लेकिन त्याग में व्यक्ति सभी काम्य कर्म भी करता है, नित्य कर्म भी करता है, यानी दोनों प्रकार के यज्ञों को कर रहा है लेकिन परिणामों की अपेक्षा नहीं करता। इसका रिजल्ट क्या है वो उसके लिए परेशान नहीं होता है, वो परिणामों के लिए कार्य नहीं करना चाहता है, लेकिन वो किस लिए करता है, जिससे उसको आध्यात्मिक ज्ञान मिले, शुद्धि हो और मोक्ष की तरफ ले जाए। हाँ, तो ऐसे कार्यों को त्यागना नहीं चाहिए, भगवान बताते हैं। जो कार्य आध्यात्मिक ज्ञान हमको प्रदान करते हों, जो शुद्धि प्रदान करते हों, जो हमको मोक्ष की तरफ ले जाने वाले हों, उनका त्याग जो है नहीं करना चाहिए। त्याज्यम दोष वद्यते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपा कर्मा ना त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, लेकिन अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या को कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। भगवान ने पहले बताया कि लोग क्या बोलते हैं, अब आगे बोलते भगवान। निश्चयम श्रुणु मे तत्र त्यागे भर सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिति। कि अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो हे नरसार्दुल, नरसार्दुल मतलब शेर, हे नरो में सिंह, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। अब भगवान उन तीन तरह के त्यागों के बारे में बताते हैं। तो तीन तरीके का त्याग क्या होता है, भगवान 7 नंबर श्लोक से लेकर 9 नंबर श्लोक तक बताते हैं। तो भगवान 5वें श्लोक में अपना व्यू देते हैं, कहते सुनो, यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। ये जो यज्ञ है, दान है, तपस्या है, इन कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है यज्ञ, दान और तपस्या, ये महात्मा लोगों को भी शुद्ध करते हैं, उनको भी शुद्ध बनाते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा धर्म है, अगर तुम मर जाओगे तो तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर तुम जीत जाओगे तो तुमको राज्य प्राप्त होगा, इसलिए तुम मेरे लिए करो, तुम राज्य के लोभ के लिए मत करो। दुर्योधन जो है वो राज्य के लोभ के लिए कर रहा है। तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है और ये मेरी प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। अभी अगर हम ऊपर से देखें तो दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है और अर्जुन भी युद्ध कर रहा है। दुर्योधन ऐसा लगता है कि दोनों लोग राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, नहीं, दुर्योधन युद्ध कर रहा है लोभ के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अर्जुन युद्ध कर रहा है, और कोई कारण नहीं है। अर्जुन तो तैयार है जंगल में जाने के लिए, लेकिन वो भगवान कहते हैं मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध करो, इसलिए अर्जुन रेडी है, भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, युद्ध करने के लिए रेडी है वो। तो पहले ऐसे टीचर हुआ करते थे, वो टीचर क्या करते थे, बच्चों को सब पढ़ाना चाहते थे, जैसे स्कूल में टीचर हुआ करते थे, वो सारा ज्ञान बच्चों को देना चाहते थे जिससे बच्चा जो है अच्छी प्रगति करे, लेकिन धीरे धीरे क्या आया, लोभ घुस गया। जो अध्यापक हैं उनमें भी लोभ घुस गया, वो क्या बोलेंगे, अभी मैं यहाँ पे तुमको क्लास में पूरा अच्छे से नहीं बताऊंगा, तो मेरी ट्यूशन ज्वाइन करो, कोचिंग ज्वाइन करो, वहां पे मैं तुमको अच्छे से बताऊंगा। तो अभी स्कूल में ठीक से सिखाया नहीं जाता है, तो ऐसा करने से हुआ क्या है, ऐसा करने से जो कार्य है, ये जो पढ़ाई है, शिक्षा है, ये दूषित हो गई। तो हमें सबसे पहले अपने जो ड्यूटी है, अपने जो कर्तव्य है, उनको अच्छे तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए, और जो जो फल है उसका वो भगवान को अर्पित करते रहना चाहिए। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि जो 4 वर्ण है उनके अनुसार कार्य क्या है, तो उसके हिसाब से व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। जो वर्ण का है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणोचित कार्य, क्षत्रिय है, क्षत्रियोचित कार्य, वैश्य है तो वैश्य जैसा कार्य, और शूद्र है तो शूद्र जैसा कार्य, उसको करना चाहिए, और वही अभी जो है भगवान आगे बताने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। बोलते हैं कि इन सारे कार्यों को, कौन सा कार्य, यज्ञ दान कर्म, यज्ञ दान तप कर्म, इन कार्यों को किसी भी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान आगे कहते हैं नेतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहा तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। अभी त्याग की बात कर रहे हैं भगवान तीनों गुणों में, तमोगुण में, रजोगुण में और सतोगुण में, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो यहां पे त्याग बताया गया है जो तामसी त्याग है। उसके पहले जैसे कुछ त्याग के बारे में हम थोड़ा और समझ लेते हैं क्या है। जैसे एक विवाह, विवाह जैसे है वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं विवाह करूंगा तो बाद में प्रॉब्लम आएगी, बाद में पता नहीं पत्नी से या पति से जमेगा कि नहीं जमेगा, और बाद में क्या होगा, डाइवोर्स हो सकता है, तो क्या करूं, मैं विवाह करूं या फिर लिव इन रिलेशन में रह लूं, उससे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, और विवाह करने में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, और लिव इन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके से वो क्या होगा, विवाह यज्ञ नहीं होगा। वो लिव इन में अगर रह रहे हैं तो विवाह यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आया शादी के बाद। जैसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं परिवार को चलाने में, बच्चों को बड़ा करने में, उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जब विवाह होता है तो भगवान विष्णु का, देवताओं का, संबंधियों का, ये सब लोग उस विवाह को देख रहे होते हैं, वैदिक मंत्रों के उच्चारण भी हो रहे होते हैं, वहां पर वृद्ध लोग भी उपस्थित होते हैं, वो आशीर्वाद भी देते हैं, और इस तरीके से जब विवाह होता है, विवाह करने के बाद क्या होगा, वो विवाह अच्छे से चलता है, वो निभाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बहुत सहनशीलता, बहुत नम्रता, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना उनके अंदर होती है, वो चला ले जाते हैं विवाह, और नहीं नहीं तो क्या होता है, नहीं तो टूट जाता है, और 2 साल किसी के साथ, फिर अगले 2 साल किसी के साथ, इस तरीके से पूरा जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह जीते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई ये यज्ञ दान तप कर्म जो बताए गए हैं, इस तरीके से अगर कोई विवाह करता भी है तो उसके अंदर कई अच्छे गुण भी डेवलप हो जाएंगे, और अगर कोई इस विवाह यज्ञ को फॉलो नहीं करता है तो जानवर की तरह जिएगा। हाँ, बच्चे पैदा किया फिर दूसरे के पास गया, और इस तरीके से जानवर और मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। तो जैसे कोई व्यक्ति सा हमको दिखता है बहुत जेंटलमैन है, अच्छे कपड़े पहना हुआ है, लेकिन वो कुत्ते के जैसा आचरण कर रहा है, तो फिर कुत्ते और उसमें डिफरेंस क्या है? तो इसलिए किसी को भी इन यज्ञों का त्याग नहीं करना चाहिए, ये सोच के कि अरे ये यज्ञ जो है फालतू है, हाँ ये जरूरत नहीं है, ऐसा सोच के इनको त्याग नहीं करना चाहिए। अभी आजकल देखा जाता है लोग दान देने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं, इंद्रिय तृप्ति में खूब पैसा खर्चा करते हैं, बाहर जाएंगे, मॉल में जाएंगे, टीवी मूवी देखने के लिए जाएंगे, दारू पियेंगे, उसमें खूब पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन भगवान के लिए दान करने में उनको बहुत कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई का अनुभव होता है, वो बहुत मुश्किल से उनके जेब से पैसा निकलता है। तो भगवान कहते हैं दान जरूर करना चाहिए। ये सब क्या करते हैं, पावनानि मनीषिणाम, ये मनुष्यों को जो मनीषी होते हैं यानी कि महात्मा लोग होते हैं उनको भी पवित्र करने वाले कार्य हैं। तो ऐसे ही तपस्या होती है। तपस्या भी कैसी है, सुबह सुबह उठ जाना, सुबह नहाना, भगवान का नाम लेना, प्रणाम करना, बड़े लोग जो घर में हैं उनको प्रणाम करना। हालांकि अभी तपस्या कठिन है, सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सब सामान्य लोग तो करना ही चाहिए, साथ साथ में ये कार्य जो है सन्यासियों को भी करना चाहिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 3 गुणों में त्याग, तमोगुण में, रजोगुण में और सत्वगुण में। तमोगुण में त्याग, नेतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस् तामसा परिकीर्तितः। तमोगुण में त्याग क्या होता है, वो भगवत कार्य को भी साधारण समझ के छोड़ देता है। जो नित्य कर्म है, जो भगवान के लिए कर्म है, उनको भी सोचता है अरे तो साधारण है, क्या करने की जरूरत है, हटाओ, विवाह के लिए यज्ञ करने की जरूरत है, चलो कोर्ट में चलो वहां बदल के शादी कर लेते हैं। वो सब बैठे रहते हैं वकील लोग, उनके बीच में चल के हम लोग शादी कर लेते हैं। तो वो उनको भी त्याग देता है जो कि भगवत कार्य है। जैसे भोजन बनाना, तो कोई भोजन बनाने में तकलीफ होती है तो उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं चलो जोमेटो से मंगा लेते हैं, स्विगी से मंगा लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कम से कम 2 बार भगवान को भोग लगाता है, भगवान को प्रेम से व्यवहार करता है, फिर उस प्रसाद को खाता है, तो ये क्या है, ये त्याग है। तो इसको भी लोग तमोगुण में त्याग देते हैं, इस भोजन बनाने को भी तमोगुण में त्याग देते। तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो अपने लिए ही बनाएगा, बस उसको खाना होगा, जैसा गंदा संदा खाता है वो वैसा ही बनाएगा, वही खाएगा, और किसी के बारे में ना तो सोचेगा, ना परिवार के बारे में, ना भगवान के बारे में, ऐसा व्यक्ति तमोगुणी कहलाता है। अभी रजोगुणी, रजोगुणी सोचेगा अरे यार आलस होता है, रोज रोज कौन बनाएगा, एक दिन बना लेते हैं चलो, और फ्रिज में रख देते हैं, और फिर क्या करेंगे, ओवन में गरम गरम करके खाते रहेंगे 10 दिनों तक, अच्छा चलो एक काम करते हैं, चलो होटल में खा लेते हैं चल के। इस तरीके से वो व्यक्ति, राजसी व्यक्ति जो है वो कार्य करते हैं। दुख मित्तेव यत कर्मा काय क्लेश भयात्यजेत, वो काय क्लेश होगा इसलिए वो भय से त्याग देते हैं। सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत, बोलते हैं कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है, ऐसा करने से कभी भी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। त्याग का उच्च फल प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है उसको। आगे भगवान नवे श्लोक में कहते हैं, अच्छा तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति पैसे पैसे कमाता है उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी सैलरी का या अपने बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ उसका एक अंश, एक अच्छा अंश वो मंदिर में दान करना चाहिए। इस प्रकार से क्या होता है, जो दान करने से हमारा जो बचा हुआ पैसा है वो शुद्ध हो जाता है। तो एक बार तामसी व्यक्ति कैसे करते हैं, वो बच्चा, माँ जो है बच्चे को बोलती है बेटा उठो 8 बज गया है, सुबह हो गई, उठो अभी, कितनी देर तक सोते रहोगे? तो बच्चा कंबल के अंदर है, 5 कंबल ओढ़े हुए है, कहता नहीं मुझे तो अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। अरे कंबल तो हटाओ तब तो उजाला दिखाई देगा। तो लोग क्या करते हैं, आलस की वजह से जल्दी नहीं उठते हैं, वो सोते ही 2-3 बजे हैं, 2 बजे सोने जाते हैं, 3 बजे सोने जाते हैं, अभी कब उठेंगे फिर वो सुबह? जब सुबह का समय जो होता है उस समय जो है ब्रह्म मुहूर्त, उस समय हर व्यक्ति को जगना चाहिए, खास करके जो सुबह 4:30 से लेकर 7 बजे तक का टाइम है उस समय हर व्यक्ति को जगना चाहिए। वो बहुत अच्छा टाइम है, उस समय हमारी साधना हमारी भक्ति वो करने के लिए बेस्ट टाइम है दिन भर में। तो उस समय वो लोग वो सब नहीं करते हैं और सोते रहते हैं। हम लोगों ने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि किस तरीके से जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में सोते हैं रात में जगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में सोते हैं दिन में जगते हैं। जिनके जो योगियों के लिए रात है वो भोगियों के लिए दिन होता है, और जो भोगियों के लिए रात होती है वो योगियों के लिए दिन होता है। तो अभी सतोगुण में त्याग क्या होता है, कार्य मित्तेव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागा सात्विको मतः। बोलते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, यानी ये तो करना चाहिए, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग जो है वो सात्विक कहलाता है, ऐसा त्याग सात्विक कहलाता है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद कह, एक बार एक गृहस्थ भक्त थे, वो जितना भी कमाते थे पूरा का पूरा पैसा लाके मंदिर में जमा कर देते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं आप सन्यासी की भांति ही हो, आप और सन्यासियों में कोई अंतर नहीं, भले आप गृहस्थ दिखाई दे रहे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने कर्म फल से बिल्कुल भी अटैच नहीं हो। तो आपका संबंध कृष्ण से है, आपका संबंध और किसी से नहीं, आप किसी और के लिए कमा नहीं रहे हो, आप भगवान कृष्ण की जो सेवा है पूजा है उसको बड़ा करने के लिए कमा रहे हो। तो वो कोई भक्त जो गृहस्थ है वो देखता है कि कई सारे लोग जो हैं इस कृष्ण भावनामृत से फायदा उठा रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है, तो धीरे धीरे वो भी इसमें पार्ट लेना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो भी भक्त बन जाता है। तो भले ही वो व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है लेकिन भौतिक कार्यों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे हमारे बॉम्बे में एक हॉस्पिटल भी है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, उसमें कई सारे डॉक्टर हैं, वो आप देखेंगे वो सब के सब डॉक्टर जो हैं वास्तव में भक्त हैं। वो तिलक लगा के आते हैं, हालांकि सामान्य लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं, पैंट शर्ट इत्यादि पहनते हैं, लेकिन वो तिलक लगा के आते हैं मंदिर में और डॉक्टर हैं और साथ साथ में वो भक्ति भी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सतोगुणी जो व्यक्ति है वो अपना कर्तव्य का पालन करता है और उसमें कर्तव्य का पालन करने में कभी भी वो हिचकिचाता नहीं है। अब भगवान 10वें श्लोक में बुद्धिमान त्यागी के बारे में बोलते हैं, ना द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। बोलते सतोगुण में जो स्थित बुद्धिमान त्यागी है, यानी बुद्धिमान त्यागी केवल सतोगुणी ही है, वो अशुभ कर्म से घृणा नहीं करता और ना शुभ कर्म में लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, मतलब उसको क्लियर है कि कर्म का जो रिजल्ट है वो मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, वो मैं अर्पित कर रहा हूं भगवान को। तो इस तरीके से वो अपने जीवन को जीता है। अगले श्लोक से संबंध, अगर कोई बंधन से बचना चाहता है तो कार्य क्यों करे? कृष्ण कहते हैं कि पूर्णतया कार्य छोड़ना संभव नहीं है। हम लोगों ने 3:5 नंबर श्लोक में पढ़ा था, नहीं कश्चित क्षणों अपी, कोई क्षण भी एक क्षण भी व्यक्ति बिना कार्य किए नहीं रह सकता है। तो इसलिए कार्य तो करना ही पड़ता है। तो भगवान कहते हैं एक सच्चे त्यागी के बारे में, नहि देह भृता सक्यम त्यक्तुम कर्म निशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी त्यभिधीयते। बोलते निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म फल का परित्याग करता है वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन परिश्रम करते हैं और जो कुछ भी कमाते हैं उसको संघ को दान कर देते हैं, पूरा पैसा मंदिर में दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। नहीं देह वृताम सत्यम तिक्तुम कर्मान्य शेषता, समस्त कर्मों का परित्याग करना। तो व्यवहारिक रूप से कर्मों का परित्याग जो है असंभव है, इसलिए धार्मिक कर्तव्यों को कर्म फलों की आसक्ति न रखते हुए करना ही वास्तविक त्याग कहलाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवित्य त्यागिनाम प्रत्यय न तु सन्यासीनाम कचित। सात्विक, जो त्यागी नहीं है उनके लिए इष्ट और अनिष्ट तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो बोलते यद्यपि धार्मिक कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप कई सारी अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनकी इच्छा न रखते हुए कार्य करता है वो उनके अधीन नहीं है और सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनसे वो मुक्त हो जाता है, यानी उसको कुछ उस कार्य का कुछ फल उसको प्राप्त नहीं होता है, वो मुक्त रहता है उन फलों से क्योंकि वो पहले से ही त्याग करके रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे भगवान फिर से प्रकृति के तीन गुणों में और साथ साथ में ज्ञान योग का सारांश प्रस्तुत करेंगे, 13वें श्लोक से लेकर 40 नंबर श्लोक। अभी भगवान यहां पे चार प्रकार के ज्ञानियों की बात करते हैं। चार प्रकार के ज्ञानी, पहले लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञानी हैं पर वो भक्ति नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरे लोग होते हैं मायावादी टाइप के लोग, ये भक्ति करते हैं लेकिन भगवान के रूप का अपमान करते हैं, भगवान का आकार नहीं है ऐसा करके बोलते हैं, बोलते हैं भगवान कोई आकार नहीं है, निराकार है। तो ये मतलब भगवान बोलते हैं कि इन दोनों का पतन होता है, जो भक्ति नहीं करते उनका भी पतन होता है और जो भगवान के रूप का अपमान करते हैं वो भी उनका भी पतन होता है। अभी बाकी दो तरीके के और हैं, एक है जो सायुज मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, यानी कि ब्रह्मवादी जो होते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांचते समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, ऐसे लोग जो हैं वो सायुज मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। और चौथे टाइप के लोग हैं जो भक्ति करते हैं और भक्तों के संग के द्वारा प्रेम प्राप्त करते हैं। तो मैंने बताया पहले दो श्रेणी के जो ज्ञानी हैं उनको भक्ति से लेना देना नहीं है, इसलिए इन दोनों का पतन हो जाता है। तीसरा जो है भक्ति की सहायता लेकर भगवान के आशीर्वाद से वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और जो चौथा है वो भक्तों के संग में आने के बाद भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है, जैसे कि चार कुमार सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, ये चार लोग ज्ञानी थे, ज्ञान योगी थे, और साथ साथ में सुखदेव गोस्वामी ये भी ज्ञान योगी थे, लेकिन भगवान के बारे में जानकर भक्तों के संग में ये इनको अंदर चेंज हो गया और ये भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो अभी आगे भगवान बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, जैसे पांचवें अध्याय में भगवान ने बताया था कि किस तरीके से पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है। तो हम अपने आप को अहंकार के वश में आकर मैं कर रहा हूं ऐसा सोचने लगते हैं, तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होती है, जब हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं तो प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे कोई व्यक्ति एक कॉलोनी निर्माण करता है, फिर दोस्तों से बोलता है देखो ये मैंने बनाया है, कोई स्कूल बनाता है तो ये देखो मैंने बनाया है, ये गाना मैंने लिखा है, ये गाना मैंने गाया है, मैंने ये बुक लिखा है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये दान हमने दिया है, ये सब चीजें जो है ये अहमता कहलाती है, अहम, अहम की भावना होती है, अहंकार की भावना जो है, एक होता है अहमता, दूसरी होती है ममता। अहमता मतलब हमने किया है, मैंने किया है, ये अहमता हो गई, और ममता मतलब जो भी अपनी चीजें हैं उनसे आसक्ति होती है बहुत। ये जो अहम है और ये जो मम है, ये दोनों जीव को इस दुनिया में बांध के रखते हैं, ऐसा व्यास देव कहते हैं श्रीमद् भागवतम में। कभी कभी मम व्यक्ति सोचता है मेरे समान कोई नहीं है, जैसे कि मोहम्मद अली सोचा करता था। मोहम्मद अली एक भी बाइट हारा नहीं था, एक भी मैच हारा नहीं था, बाद में उसको ऐसी बीमारी हुई पार्किंसन नाम की, कि वो चाय की कप भी नहीं उठा पाता था। उस समय उसने अपने आप को पहले घोषित कर दिया था कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन बाद में उसने बोला कि आई एम द बेस्ट फूल, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। तो ममता में व्यक्ति जो है गर्वित हो जाता है और अहमता में व्यक्ति अपने स्थान को बचा के रखना चाहता है। जैसे कर्ण, कर्ण ने देखा कि अरे सब लोग अर्जुन का, अर्जुन को प्रेस कर रहे हैं, अर्जुन का बोलबाला है, मैं भी यही करूंगा और जो लोग हैं वो मुझे भी प्रेस करेंगे, मुझे भी, मेरा भी ग्लोरिफिकेशन करेंगे। तो उसने भी वैसे ही किया। जब पांडव लोग जो हैं वो अपना युद्ध क्षमता दिखा रहे थे सबके सामने, तो कर्ण बोला मैं भी दिखाना चाहता हूं, उसने भी किया, सब लोगों ने उसको भी प्रेस किया। फिर उसने अर्जुन से कहा, देखिए उसने अर्जुन से कहा, देखो आज हम दोनों युद्ध करके देखेंगे कि कौन जीतेगा। हाँ, मतलब उसका इंटेंशन ये था कि कर्ण जो है अर्जुन को मार देना चाहता था तुरंत, क्योंकि आप इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए, तो वो अपने स्थान को बचा के रखना चाहता था। तो उसी समय कृपाचार्य जो हैं उन्होंने मना किया, नहीं हाँ आप दोनों बड़े योद्धा हो, बड़ा युद्ध हो सकता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा बोला, उन्होंने कहा कि देखिए युद्ध जो है दो रॉयल लोगों के बीच में होना चाहिए, दो राजाओं के बीच में होना चाहिए, राजकुमारों के बीच में होना चाहिए। कर्ण से पूछा पहले तुम बताओ तुम कौन हो, तो कर्ण कुछ बोल नहीं पाया, वो चला गया। तो इस तरीके से युद्ध जो है वो नहीं हुआ। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रकाशित करता है हमारी अहमता को। जब ये होता है उसके बाद लोग निंदा करने में लोग जुड़ जाते हैं। तो यहां पे 14 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं है, बल्कि 5 कारण है कोई भी कार्य होने के। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 चीजें हैं, कौन कौन सी? अधिष्ठान, वो स्थान कौन सा है, कर्ता यानी कि आत्मा कार्य करने वाला, करणम यानी कि इंद्रियां, और चेष्टा यानी कि जो हम प्रयास करते हैं, और 5वां भगवान या भाग्य की अनुमति। तो ये जो 5 घटक हैं, कोई भी कार्य होता है उसमें इन 5ों का रोल होता है, कोई भी कार्य होता है उसमें इन 5ों का रोल होता है। तो ये हमें समझना चाहिए। जैसे समझ लीजिए एक एग्जांपल के द्वारा कि आपको कार चलानी है, तो अधिष्ठानम क्या है? कार, ठीक है। कर्ता कौन है? ड्राइवर यानी कि आप। चेष्टा क्या है? चेष्टा है कि ब्रेक लगाना, क्लच दबाना, एक्सीलेटर दबाना। और करणम क्या है? करणम है ब्रेक इत्यादि, वाइपर इत्यादि, वो करणम है। और भगवान की अनुमति से ही हम ऐसा कर सकते हैं। दैवम मतलब आप यहां पे, वो कार जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो रोड पे डिपेंड करती है, रोड होनी चाहिए कार चलने के लिए। तो ये यहां पे पता चल रहा है कि वास्तव में 5 कर्ता हैं, आपके अलावा 4 कर्ता और हैं। इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि 5 लोग रिजल्ट लाने के लिए काम कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि वो स्थान भी मैटर करता है, वो इंद्रियां भी मैटर करती हैं, हमारा प्रयास भी मैटर करता है। मान लीजिए बीमार हो गया तो प्रयास नहीं रहेगा, और भगवान की अनुमति भी हमारे साथ में होनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, तभी वो कार्य हो सकता है। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। हाँ 35, हाँ। तो भगवान यहां पे आगे बोलते हैं कि जैसे कोई माली है, दूसरा एग्जांपल, कोई माली है, गार्डनर है, वो गार्डनर जो है वो बीज लगाता है। अभी बीज कहां से लिया? मालिक ने दिया। पानी की व्यवस्था किसने किया? मालिक ने किया। मोटर की, पाइप की, सब कुछ लगाया। अभी इस व्यक्ति ने क्या किया? उस बीज को पृथ्वी में लगा दिया। अभी फूल आया, अब ये सोचने लगा ए मैंने उगाया, मैंने किया। अरे भाई 5 जो और 4 कारण है वो भी तो हैं यहां पे। हाँ, बीज मिला, जमीन मिली, पानी मिला, मोटर मिला, हमने क्या किया? जस्ट उसमें पृथ्वी में जो है बीज को लगा दिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अहंकार मत करो। तो अगले श्लोक से संबंध में प्रभुपाद लिखते हैं कि एक कर्ता के रूप में जीव का कार्य केवल भगवान की अनुमति से होता है, और यह भगवान द्वारा दिए गए शरीर और इंद्रियों पर निर्भर करता है। लेकिन जो केवल जीव को कर्ता के रूप में देखता है वह मूर्ख है। ये पांच लोग वास्तव में करने वाले हैं। तो अभी कोई व्यक्ति अगर कर्ता समझता है अपने आप को तो उसकी मानसिकता क्या होती है वो यहां पर बताया गया। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मनम् केवलम् तु यः पश्यति कृत बुद्धित्वान् सपश्यति दुर्मतिः। बोलते हैं कि मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित और अनुचित कार्य करता है वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है, और जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आप को ही कर्ता मान लेता है वो बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान लोकान हन्ति न निबद्धते। बोलते हैं कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है कर्म फलों से, वो इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता है, ना ही वो अपने कर्मों से बंधा हुआ है। मतलब वो कार्य कर रहा है फिर भी उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, वो उससे पाप नहीं लगता उसको, इसलिए मनुष्य को मारता हुआ भी वो नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, भगवान की आज्ञा से कर रहा है। जैसे कि अर्जुन अभी आगे के श्लोकों में खास करके हाँ जैसे आपको पता होगा नल कुबेर और मणिग्रीव करके दो कुबेर के पुत्र थे। ये दोनों कुबेर के पुत्र ये मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे कई सारी अप्सराओं के साथ में नग्न होके, और वहीं पे उस समय वहां से नारद जी निकले। अब ये लोग इतने कुटिल थे कि इन्होंने नारद जी से बोला, अरे आप इस रास्ते से क्यों आ रहे हो, आपको दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, इधर हम लोग इधर मजे ले रहे थे, इधर हमको करने थे, इधर से क्यों आ रहे हो सन्यासी होते हुए भी। अब नारद जी ने को देख के जो स्त्रियां थी उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए, अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन ये लोग वैसे ही खड़े रहे। तो नारद जी ने इनको श्राप दिया, श्राप दिया कि तुम लोग जो है पेड़ बन जाओ। हालांकि वो श्राप जो है उनके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि वो पेड़ कहां बने, वो नंद बाबा के घर में पेड़ बने, और भगवान कृष्ण जो है जब वहां पे लीलाएं करते थे उन सारी लीलाओं को उन लोगों ने देखा। तो ऐसे ही अम्बरीश महाराज के साथ हुआ। अम्बरीश महाराज अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते, सारी इंद्रियों को, हाथ से मंदिर का मार्जन करना, आंख से भगवान का दर्शन करना, कान से भगवान के बारे में श्रवण करना, नाक से तुलसी इत्यादि जो भगवान को आफिर हुई है उसको सूंघना, प्रसाद खाना केवल जिह्वा से, बोलना केवल भगवान के बारे में। इस तरीके से कर्ता होते हुए भी अपने आप को कर्ता नहीं मानते, ये है अकर्ता होने की मानसिकता। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान लोकान हन्ति न निबद्धते। ये है। तो जैसे हम लोग अपने आप को कर्ता मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया। इवन कभी कभी तो लोग देखते हैं कि वो मैच चल रहा होता है, क्रिकेट मैच चल रहा होता है, क्रिकेट मैच में वो बात करते हैं, देखना आज ऐसा होगा, और बाद में वैसा ही हो जाता है तो बोलता, देखा मैंने कहा था इसलिए ऐसा हो गया। अरे भाई तुम्हारे कहने से नहीं हुआ, वहां पे कितने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं उस वजह से ऐसा हुआ है। तो लोग अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। हम लोग जब इस संसार में आए थे, खास करके जब भी जन्म लिए थे, तो इस संसार में सब कुछ पहले से ही चल रहा था। सूरज निकल रहा था, चंद्रमा निकल रहे थे, तारे निकल रहे थे, बारिश हो रही थी, फूल थे अवेलेबल, फल भी अवेलेबल थे, प्रकाश भी अवेलेबल था, गेहूं चावल इत्यादि भी सब कुछ अवेलेबल था। हमने यहां पे आके कुछ किया, इस संसार में आके कुछ किया, और वो भी इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होके, ऐसा भी नहीं हम कुछ लेके आए थे अलग से, नहीं, यही की चीजों को यूज किया, और वही वही पावर लाइट यूज किया, वही वही पानी यूज किया, वही हवा यूज किया, और हम सोच रहे हैं कि हम कुछ हैं, आई एम समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूं। तो जैसे पुत्र जो है वो अपने माता पिता पे डिपेंडेंट होता है, उससे कहीं ज्यादा हम लोग भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट। भगवान के बिना हम एक सेकंड भी नहीं जी सकते, भगवान अगर नहीं चाहें तो। तो एक बार एक राजा था, तो उस राजा ने क्या किया, अपने राज्य को छोड़ दिया, रानियों को छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। अभी वो बहुत डिस्टर्ब था, अभी वो सोच रहा था कि बहुत टेंशन हो रही है, ये कपड़े मैंने पहन लिए हैं पर अभी भी मैं शांत नहीं हूं। तो उन्होंने एक सन्यासी को बुलाया, एक सन्यासी उधर से जा रहे थे, उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि आप कौन हैं, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, मैं आपको नहीं जानता हूं। तो ये जो राजा था, जो सन्यासी बन गया था, अरे तुम मेरे को नहीं जानते, मैं इस राज्य का राजा हूं, इतने घोड़े मेरे पास थे, इतने हाथी मेरे पास थे, मेरे अंडर में इतने सेनापति रहते थे, हमारा खजाना इतना बड़ा खजाना था, इतनी सारी रानियां मेरे साथ थी। एक घंटे तक उसने अपनी स्टोरी सुनाई। तो वो सन्यासी बोला, अभी मैं समझ गया कि आप क्यों विचलित हो, आपने राजगद्दी तो छोड़ दी है पर वहां की आसक्ति को नहीं छोड़ा, अहंकार और ममता आपके अंदर अभी भी है। तो अगर कोई व्यक्ति आसक्ति को छोड़ता है तो उस व्यक्ति को इस आसक्ति को छोड़ने में भी गर्व का अनुभव नहीं करना चाहिए। तो एक बार एक गृहस्थ भक्त एक ब्रह्मचारी को बोल रहे थे, बोले अरे आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं, पुण्यात्मा हैं, बीवी बच्चों को संभालना नहीं है, अबे इतने दिन से आप मंदिर में ही रह रहे हो। तो ने बताया, अरे भाई हम भी आपकी तरह ही हैं, पर गुरु की कृपा है कि ये सेवा और ये जीवन हमको मिला हुआ है, हम हमेशा भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हर चीज के लिए भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि एक पुत्र जो है अपने पिता के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में गुरु और वैष्णव की बड़ी कृपा है। हमारे जीवन में हमने जो कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति की है उसका कारण कौन है? ये वैष्णव है। ये अगर नहीं होते तो हम कैसे प्रगति कर पाते, भगवान की भक्ति कैसे कर पाते, कौन हमको बताता, कौन हमको प्रेम करता? तो इनका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। तो अभी जैसे क्या होता है, कभी कभी हम हमारे हिसाब से जज करते हैं लोगों को। जैसे मान लीजिए अभी एक कंपटीशन किया जाए, एक घोड़ा और कुत्ते में कंपटीशन किया जाए कि कौन जीतेगा, दौड़ के दौड़ने का कंपटीशन किया जाए, तो जाहिर सी बात है घोड़ा जीत जाएगा, हाँ कुत्ता नहीं जीत पाएगा। अभी वहीं पे अगर हम भौंकने का कंपटीशन करें तो कौन जीतेगा? तो कुत्ता जीत जाएगा, घोड़ा हार जाएगा। अभी ये नहीं, कुत्ते को ये नहीं सोचना चाहिए अरे भाई मैं कितना अच्छा भौंकता हूं, और घोड़ा सोचे कि मैं कितना अच्छा दौड़ता हूं। ये दोनों की दोनों शक्तियां कहां से आ रही हैं? कृष्ण से आ रही हैं। तो कृष्ण को क्रेडिट जाना चाहिए, वो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? कृष्ण को जाना चाहिए। इसलिए भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि कार्य के प्रेरक क्या हैं और घटक क्या हैं। इन दोनों का ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कार्य के तीन प्रेरक हैं, प्रेरक मतलब जो प्रेरणा देते हैं, और कार्य के तीन घटक हैं, घटक मतलब पार्ट। तो प्रेरक क्या है? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञात, ज्ञान, ज्ञान के विषय और ज्ञान को जानने वाला। और कार्य के घटक क्या है? बोलते हैं कि कर्म, कर्म के साधन और कर्म करने वाला, ये तीन घटक हैं। तो कोई भी कार्य होता है इनके कारण, तीन प्रेरक होते हैं, कुछ ज्ञान होता है उसके कारण कोई व्यक्ति कार्य करता है, कुछ ज्ञेय होता है उसके विषय का है इसलिए वो कार्य करता है, उसके बारे में जानने वाला है इसलिए कार्य करता है। और ये तीन चीजें करनी रहती हैं उसमें, कि कोई कर्म होता है किसके द्वारा होता है? इंद्रियों के द्वारा होता है, और आत्मा, जो आत्मा की उपस्थिति जो है अनिवार्य होती है, क्योंकि आत्मा ही जो है डिजायर करती है। तो इस तरीके से कार्य के तीन घटक पाए जाते हैं। अभी कार्य के प्रेरक और कार्य के घटक भी भौतिक गुणों के अधीन है। अभी अगले भाग में प्रकृति के तीन गुणों के परिणामों से अवगत कराएंगे भगवान, जैसा उन्होंने 14वें और 17वें अध्याय में किया है। अभी 18 में वो बताए गए 6 में से 3 घटकों पर 3 गुणों के प्रभाव का वर्णन करते हैं। क्या है? 19 नंबर श्लोक बोलते, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्रण उतान्यपि। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे सुनो। अभी सत्व में ज्ञान और रजो में ज्ञान और तमो में ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्वकम्। ज्ञान जो है और सतोगुण में कैसा होता है, बोलते हैं वो व्यक्ति सभी जीवों में एक प्रकार की आत्मा को देखता है। वो देख रहा है कि एक ही प्रकार की आत्मा सभी अलग अलग जीवों में विद्यमान है, एक जैसी आत्मा है। रजोगुण में क्या होता है, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। बोलते रजोगुण में व्यक्ति क्या सोचता है, ये अलग है, वो अलग है, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा शत्रु है, इस प्रकार से वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की आत्माओं को देखता है। और तमोगुणी यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पम् च तत्ताम समुदाहितम्। और ऐसा ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो कि बहुत खराब कार्य है उसको सब कुछ मान लेता है, यानी इंद्रदृप्ति, इंद्रदृप्ति को मान लेता है और सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो तामसी ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से ज्ञान को भगवान ने बताया 20-21-22 श्लोक। अभी 23-24-25 में भगवान कर्म को बताते हैं तीनों गुणों में, कर्म कैसे है तीनों गुणों में। तो बोलते हैं नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कर्म कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। जो कर्म नियमित है और आसक्ति राग और द्वेष से रहित है, ध्यान से सुनिए, नियमित कर्म और जो आसक्ति नहीं है, जिसमें कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ऐसे कर्म फल की चाह के बिना जो कार्य किया जाता है उसको सात्विक कर्म किया जाता है। जैसे भगवान की भक्ति, उसमें कोई भी इच्छा नहीं रहती व्यक्ति के अंदर। अभी कर्म जो है वो रजोगुण में कैसे होता है, यत्तु कामे सुना कर्म सांग कारेण वा पुनः कृते बहुलायासम तदराज समुदायतम। कि जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त, यानी प्रयास में अनियमितता रहती है, जब इच्छा हुई तब किया, नहीं इच्छा हुई नहीं किया, और क्या है इंद्रिय भोग की इच्छा रहती है, बहुत इंद्रिय भोग की प्रबल इच्छा रहती है, तो उस कार्य को रजोगुणी बोला जाता है और वो क्या होता है मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है। तीसरा कर्म जो है तमोगुण में, अनुबंधम क्षयिंसा अनपेक्षा पौरुषम मोहदारभ्यते कर्म यत्ताम समुच्चिते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वो तामसी कहलाता है। तो इस प्रकार से वो कर्म जो है जो शास्त्र के अगेंस्ट में है, जिसमें व्यक्ति भ्रमित रहता है और हिंसा करता है, दूसरों को कष्ट प्रदान करता है, ऐसे कार्य तामसी कहलाए जाते हैं। अभी भगवान इसके आगे तीनों गुणों में कर्म, देखिए ये फोटो यहां पे दी हुई है। सत्वगुण में कर्म कैसा है कि जिसका जो कर्म है वो उस हिसाब से कर्म कर रहा है, वैसे वैसे का काम कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम कर रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण का, शूद्र शूद्र का। रजोगुण में कर्म यानी कि जो कंपनीज में काम करते हैं, और तमोगुण में आतंकवादी जो है, ये तीनों गुणों में कर्म है। फिर अभी कर्ता, कर्ता के बारे में भगवान बताते हैं 26-27-28 नंबर श्लोक में कि कर्ता वो सतोगुण में रजोगुण में तमोगुण में किस प्रकार से होता है। मुक्त संगो अनहम वादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। बिना मिथ्या अहंकार के कार्य करता है वो, दृढ़ संकल्प और उत्साह और सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, कभी सफलता मिलती तो भी वही, असफलता मिलती तो भी वही, वैसे ही रहता है। रजोगुण में क्या होता है, बोलते हैं रजोगुण में सकाम इच्छाएं बहुत रहती हैं, लालसा बहुत रहती है, ईर्ष्या होती है और प्योरिटी नहीं रहती, और वो जो है सफलता मिलती तो बहुत खुश हो जाता है, विफलता मिलती तो बहुत दुखी हो जाता है। तमोगुण, तमोगुण में वो क्या करता है, वो वरिष्ठों के विरुद्ध चला जाता है, जो वरिष्ठ हैं, सही बताने वाले, सही रास्ता बताने वाले हैं, उनके अगेंस्ट में जाता है, आलसी बन जाता है, उदास बन जाता है, और वो विलंब करता है किसी भी कार्य को करने के लिए, और सफलता के लिए दूसरे व्यक्तियों को धोखा देता है, अपमान करता है उनका, ऐसा व्यक्ति तमोगुण में कर्ता बताया जाता है। जैसे सत्वगुण में कर्ता अर्जुन, रजोगुण में कर्ता दुर्योधन, बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य से, और तमोगुण में ये व्यक्ति अपने घर को जला के जो है पानी डाल रहा है उसके ऊपर, तमोगुण में करता है। अभी बुद्धि और दृढ़ संकल्प के भी तीन प्रकार हैं। बुद्धि, सतोगुण की जो बुद्धि है 30 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, ये बुद्धि जो है अनुचित और उचित क्या है वो पहचानती है। रजोगुण में व्यक्ति उचित और अनुचित को समझ नहीं पाता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और तमोगुण तो और खतरनाक है, उसमें व्यक्ति अनुचित को उचित समझ लेता है और उचित को अनुचित समझ लेता है। अभी वही 29 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, बुद्धर वेदम ततश्चैव गुणस्त्रिविधिम श्रुणु पूज्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अब मैं प्रकृति के गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि और धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसको सुनो। तो ये बुद्धि के बारे में भगवान बता रहे हैं। पहला देखिए सत्व गुण में बुद्धि, ये बुद्धि द्रौपदी की देखी गई। द्रौपदी के पांच पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, पांच पुत्रों को, और बाद में अर्जुन और कृष्ण अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए। जब अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए तो अश्वत्थामा ने बिना उसको मालूम नहीं था कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लिया जाता है, बिना उस विद्या को जाने इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर किया, और बाद में अर्जुन ने उसको पकड़ा और उसको बंदी बना के लेके आया। तो द्रौपदी जो है, द्रौपदी के पांच पुत्रों को मारा गया, और द्रौपदी कह रही है नहीं उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो उसको? बोलती है कि मैं जिस प्रकार से अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूं, ऐसा इसकी मां यानी हमारे गुरु जी की जो पत्नी है कृपी, उसको ना रोना पड़े। यह है सतोगुणी बुद्धि, वो दूसरों का भला सोचती है। रजोगुणी बुद्धि क्या है? वो क्या करती है? वो उचित और अनुचित नहीं पहचान पाती। वो बोलते हैं कि मनुष्य जो है वो जानवरों से आया, ये संसार अपने आप पैदा हुआ, ऐसा करके उनको पता नहीं रहता सही क्या है गलत क्या है। और तमोगुण की बुद्धि, वो तो जो आतंकवादियों का कार्य होता है वो उसकी बात। तो इस प्रकार से बुद्धि जो है 30-32 श्लोक में बताई गई है। अभी दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प भी तीन प्रकार के होते हैं, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। सतोगुण का दृढ़ संकल्प क्या होता है? वो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित हो जाता है कि मैं इंद्रिय नियंत्रण करूंगा और मोक्ष प्राप्त करूंगा, उसके लिए अटूट दृढ़ संकल्प करता है। और रजोगुणी व्यक्ति वो इंद्रिय भोग करता है आर्थिक विकास और सांसारिक धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए अटूट दृढ़ संकल्प करता है, इंद्रिय भोग करने के लिए करता है, वो आर्थिक विकास के लिए करता है, उसके लिए दृढ़ संकल्प करता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति जो है वो तो स्वप्न से परे नहीं जा सकता, स्वप्न में ही जीवन अपना बिता देता है। तो इस प्रकार से भगवान ने 33-34-35 में दृढ़ संकल्प के बारे में बताया। अभी 36 नंबर श्लोक, सुख के भी तीन प्रकार है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी सुख भी तीन प्रकार का है। सतोगुणी सुख क्या होता है? पहले विष लगता है, बाद में अमृत लगता है। मतलब एक शुरू शुरू में जब हम जप करते हैं तो एक माला भी बहुत कठिन लगता है जप करना, लेकिन बाद में 16 माला भी इजली हो जाते हैं। तो शुरू में तकलीफ रहती है, जैसे गंदी आदत छोड़ना, किसी को कुछ गलत आदत पड़ी हुई इसको छोड़ना बहुत तकलीफ रहती है, मन उससे आसक्त रहता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि जिसको हम पकड़ के रखे हैं वो हमको ही परेशान करने वाली चीजें हैं, तो इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे कोई कूड़ा उठाने वाला होता है वो जगह जगह से कूड़ा उठाता है, ऐसे ही हम लोगों ने भी क्या किया, बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लिया और उसको फेंकना नहीं चाहते हैं। अभी जैसे किसी को बोल दिया जाए भाई आपको स्मार्टफोन, आपका जो है, आपका जो मोबाइल है, वो आपको यूज नहीं करना है अभी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। उसके लिए वो इतना अटैचमेंट है उस मोबाइल से, वो छोड़ नहीं सकता। तो ये सतोगुणी सुख रहता है, वो पहले लगता है विष लेकिन बाद में अमृत लगता है, बहुत आनंद आता है बाद में। और दूसरा रजोगुणी सुख क्या होता है? रजोगुणी सुख पहले अमृत लगता है लेकिन बाद में विष लगता है। एक मेरा फ्रेंड था, तो फोन पे है, उसने एक लड़की से संपर्क किया, उससे बात करने लगा और उत्तराखंड में वो उससे मिलने के लिए गया चुपके से। तो वहां पे पहुंचा, कैसे भी करके छत पे पहुंच गया, और छत पे ही उसने अपनी उस फ्रेंड को भी बुलाया, उस लड़की को भी बुलाया, और वहां पे बातचीत चल रही थी। रात का समय था, लगभग 10-10:30 बज रहा था, बातें कर रहे थे, उसी समय लड़की के माता पिता आ गए ऊपर और फिर उसको बहुत मारा उस लड़के को। और ये लड़के का रिलेटिव का घर पड़ोस में ही था, जब उन लोगों को पता चला तो उन लोगों के सामने इस व्यक्ति की कितनी बेइज्जती हुई, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता है। तो रजोगुणी व्यक्ति कैसा है, वो शुरू शुरू में लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये कार्य जो कर रहा हूं इसमें बहुत इंद्रिय भोग मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन बाद में ये कष्ट प्रदान करने वाला है। जैसे कैमल होता है, ऊंट होता है, ऊंट क्या करता है, वो कैक्टस का जो पेड़ होता है राजस्थान में जो पाया जाता है रेगिस्तान में, तो कैक्टस के पेड़ को वो चबाता है। जब कैक्टस का पेड़ में कांटे होते हैं, वो कांटे उसकी जीभ में घुस जाते हैं, जीभ में घुसते हैं तो जीभ से खून निकलता है, वो खून को पीता है, कहता है वाह क्या टेस्ट है इस पेड़ में। अभी वो क्या कर रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है, लेकिन उसको टेस्ट लगता है वहां पर। और जो तमोगुणी होते हैं वो तो उनकी अमृत की केवल काल्पनिक आशा होती है, शुरुआत से अंत तक विष नशा और नींद से उत्पन्न होता है, शुरू से अंत तक केवल विष रहता है। जैसे सिगरेट पीते हैं लोग, तो सिगरेट पी के वो क्या सोचते हैं, अरे देखना एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे सिगरेट से सुख मिलने लगेगा, या सिगरेट पी लूंगा तो मैं सारे गम को भूल जाऊंगा, मांस खाना शुरू करते हैं इस प्रकार से। तो ये तमोगुण जो है ये केवल इसमें आशा ही रहती है, पूरा विष ही रहता है पूरे जीवन। अभी जो व्यक्ति भगवान की शरण, भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। अभी यहां पे धृति की बात की जा रही है 33, 34, 35 नंबर श्लोक में कि बोलते हैं धृत्वा यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगिनाव्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। तो ऐसी धृति सात्विकी है। आगे ओके हाँ 33 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और इस प्रकार मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति जो है वो सात्विक कहलाती है। यानी दृढ़ता की बात कर रहे हैं, दृढ़ता जो दृढ़ संकल्प है वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 33, 34, 35 में यह बताया गया है। ओके थोड़ा फास्ट चलते हैं आज, समय कम है। अभी भगवान 36 नंबर श्लोक से कहते हैं सुनो, सुखम त्रिदानी त्रिविधम श्रणु मे भरतर्षभा अभ्यासा द्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभी सुख के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो ये 36, 37, 38 और 39 इनमें सुख के बारे में बताया गया है। सत्वगुण में सुख, रजोगुण में सुख और तमोगुण में सुख, हमने उसके बारे में चर्चा कर ली है। अभी हम लोग आगे चलते हैं 40 नंबर श्लोक। भगवान कहते हैं कि न तदस्ति पृथिव्याम वादिवि देवी शिवा पुनः सत्वम प्रकृति जैन मुक्तम यदि सात्र गुण है। बोलते हैं संसार में न स्वर्ग लोक में न देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन प्रकृति के गुणों से मुक्त हो, यानी हर व्यक्ति इस प्रकृति के गुणों के अंडर में ही रह रहा है। ठीक है, अभी आगे भगवान आदर्शकर्ता के बारे में बताते हैं। तो अभी यहां पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बारे में आगे चर्चा होती है। भगवान कहते हैं 41 नंबर श्लोक, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये जाति से नहीं है बल्कि उनके प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव ऐसा होता है। कोई ब्राह्मण स्वभाव का होता है, कोई क्षत्रिय स्वभाव का होता है, कोई वैश्य स्वभाव का होता है, कोई शूद्र स्वभाव का होता है। अभी क्या क्या उनका लक्षण है वो भगवान जो है 42, 43, 44 में आगे के श्लोकों में बता रहे हैं। समोदमस्तप शौच शौचम शांतिरार्जवमेव वा ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो ब्राह्मण है उसका कर्म क्या रहता है, कैसा रहता है वो, तो बोलते हैं समो शांति प्रिय रहता है, आत्मसंयमी होता है, तपस्या करने वाला होता है, पवित्र रहता है, सहिष्णु होता है, सत्यनिष्ठ होता है, ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता में रहता है। ये उसके स्वाभाविक गुण है, ये ब्राह्मण के गुण है। अभी क्षत्रिय कैसा होता है, सौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमी सर्वभावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। उनके अंदर वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य रखना, उदारता और नेतृत्व, ये सब जो है ये गुण किसके हैं, क्षत्रियों के गुण बताए गए हैं। अभी वैश्य के क्या गुण है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। उनके कार्य क्या बताए गए, कृषि करना यानी खेती करना, गोरक्ष यानी गाय की रक्षा करना और वाणिज्य यानी व्यापार करना, ये वैश्यों का स्वाभाविक धर्म है। शूद्रों का क्या है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। शूद्रों का कर्म क्या है? श्रम करना, लेबर कार्य, और अन्यों की सेवा करना। तो ये कर्म जो है बताए गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। तो इस प्रकार से 41 से 44 तक भगवान ने सामाजिक व्यवस्था के बारे में और उसके लक्षण के बारे में बताया। अभी 45 से 48 में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करता रहता है उसका क्या महत्व है। बोलते हैं अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। यत्ता प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणाम तभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हर कोई अपने विशेष कर्तव्यों का पालन करके भगवान की पूजा करके परिपूर्ण बन जाता है। अभी आगे बताते हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर लेता है। सैतालीस नंबर श्लोक भगवान कहते हैं श्रेयांसो धर्मो विगुणः। अपना जो धर्म है उसको भली भांति संपन्न ना कर पाना, पर धर्मात सुनिष्ठितात, और दूसरे धर्म को अच्छे से कर लेना। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। बोलते हैं अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वो कितना ही गलत तरीके से क्यों ना किया जाए वो सही है। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने से, जो कि वो अच्छे प्रकार हम कर सकते हैं, फिर भी वो अच्छा क्या है, अपने कार्य को करना वो ज्यादा अच्छा है, भले गलत तरीके से करो, लेकिन दूसरे के कार्य को भले ही आप अच्छे तरीके से करते हो वो मत करो। भगवान कहते हैं अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है तो उसको पाप नहीं लगता है। 48 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभ दोषेण धूमेन अग्नि वावृता। बोलते हैं कोई भी प्रयास जो होता है उसमें कुछ ना कुछ तो दोष होता ही है, जैसे अग्नि जो है धुएं से आवृत रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को कभी भी त्यागे ना, भले उसमें दोष क्यों ना हो, उसके स्वभाव के अनुसार ही कर्म करे। ये भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो स्वभाव है उसके अनुसार ही उसको कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण को शूद्र का कर्म और क्षत्रिय को वैश्य कर्म, ये सब मिक्स नहीं होना चाहिए, भगवान का कहना है। अब भगवान बताते हैं 49 नंबर श्लोक में क्या होता है। बोलते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रहा नैस कर्म सिद्धिम परमम संन्यासेना दिगच्छति। जो आत्म संयमी है, अनासक्त है और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य अपरा। जिस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था यानी कि ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्थाएं प्राप्त कर लेता है, उसका मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा, उसे अब तुम सुनो। भगवान बताते हैं कैसे वो प्राप्त करता है शुद्ध भक्ति को, ब्रह्म स्थिति को कैसे प्राप्त करता है। तो बताते हैं बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयान् त्यक्त्वा रागद्वैषो विदुष्य च विविक्तसेवे लघ्वासी यत्वा काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाशिता अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो बोलते हैं कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, मन को वश में रखते हुए, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत में वास करता है। एकांत मतलब ऐसा नहीं कि जंगल में चला जाए, एकांत मतलब ऐसी जगह जहां पे सब लोग एक ही कार्य कर रहे हो, भगवान की भक्ति। जो थोड़ा खाता है, बहुत नहीं खाता, जो अपने शरीर, मन और वाणी को वश में रखता है, हमेशा सदा समाधि में रहता है, वो विरक्त है, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है और शांत है, वो आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर लेता है, यानी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म अवस्था में क्या होता है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम। जो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत ब्रह्म पर ब्रह्म का अनुभव करता है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वो कभी शोक नहीं करता, न किसी वस्तु की कामना करता है, वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है और उस अवस्था में वह क्या होता है, वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है, ये उसका चरम लक्ष्य है। अब भगवान 55 नंबर श्लोक में बोलते हैं तुम सुनो मेरी बात अर्जुन, अभी मैंने सारा तुमको बता दिया है, सुनो ये लास्ट बात और बताता हूं तुमको। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विसते तदनन्तरम्। बोलते हैं देखो केवल भक्ति से ही मुझको समझा जा सकता है मैं जैसा हूं। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में मेरे पूर्ण भावना मत में होता है तभी वो व्यक्ति वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, जब वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है। इसलिए सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद विपाश्रयः मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम्। बोलते मेरे शुद्ध भक्त जो है वो मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से उनको नित्य और अविनाशी धाम प्राप्त होता है। वो उस धाम को जाते हैं जहां से लौट के कोई भी वापस नहीं आता। 57 नंबर श्लोक और है, भगवान कहते हैं चेत सा सर्वकर्माणि मई संन्यास्य मत परा बुद्ध योगम उपाश्रित्यम चित्ता सतम सत्तम भवा। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, मेरी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। यानी भगवान कहते हैं मेरे ऊपर डिपेंड रहो, मैं डिपेंडेंसी मेरे ऊपर रखो, मेरे संरक्षण में कार्य करो और मेरी भक्ति में हमेशा सचेत रहो। अभी भगवान 56 नंबर श्लोक 57 58, हाँ 58 से भगवान बोलना शुरू करते हैं कि कृष्ण भावना मत में कार्य और अकार्य करना क्या होता है। ये बिल्कुल भगवान का अंतिम जो है प्रवचन चल रहा है अभी। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसी अथ चेत्वम अहंकारं श्रोष्यसी विनक्षसी। भगवान कहते हैं कृष्ण भावना में कार्य करने का परिणाम क्या होगा, यदि तुम मुझसे भावना भावित हो गए तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। मेरी भक्ति करोगे तो बद्ध जीवन का फर्क तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मिथ्या अहंकार के वश में होके ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, विनक्षसी तुम्हारा विनाश हो जाएगा हे अर्जुन। आगे कहते हैं भगवान यदा अहंकार माश्रित्या न योत्सेति मन्यसे मिथ्येस व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोच्छति। अगर तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते हो और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, जंगल भाग जाते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाव अनुसार युद्ध में लगना ही होगा। चलो मान लिया तुम जंगल भाग जाओगे, जंगल जाओगे वहां पे कोई भिखारी आएगा तुमसे, बोलेगा अरे देखो ये भिखारी ने मेरा पैसा छीन लिया है, तो तुरंत धनुष बाण लेकर तुरंत तैयार हो जाओगे, बोले भाई मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन तुम तो त्यागी हो, तुम तो भाग गए जंगल भाग गए थे, ये युद्ध छोड़ दिया था, अभी तुम वहां पे जाके क्षत्रिय बनने का प्रयास करोगे, इसलिए तुम्हें उधर भी युद्ध में लगना पड़ेगा। इसलिए सुनो मेरी बात अर्जुन, स्वभाव जेन कौन्तेया निबद्धा स्वयं कर्मणा कर्तु नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि स वशो अपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं तुम मोह में हो इसलिए तुम मना कर रहे हो, लेकिन सुनो तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही कर्म करोगे। अभी मना कर रहे हो ना, जंगल जाओगे, जंगल में जाके तुम फिर से क्षत्रिय बनने का प्रयास करोगे, वहां जाके लीडर बनने का प्रयास करोगे, इसलिए अभी समझ जाओ। क्योंकि व्यक्ति जो है अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, स्वभाव उसका छूटता नहीं है, स्वभाव जो है वो नहीं छूटता। भगवान कहते हैं सुनो परमात्मा जो है वो गुरु और मार्गदर्शक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। बोलते हैं अर्जुन परमेश्वर जो है प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में यानी कि शरीर में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। इसलिए क्या करो, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ और उसकी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त करोगे और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त कर लोगे। भगवान ने कुछ छुपा के रखा है अभी। भगवान कहते हैं सुनो इति मे ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमर्शे तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कहते देखो मैंने अभी तुमको गुह्यतर ज्ञान बता दिया है, गुह्यात् गुह्यतरम मया, गुह्य में गुह्य ज्ञान जो है गुह्यतर ज्ञान वो तुमको बता दिया है, बहुत सीक्रेट नॉलेज था वो मैंने तुमको बता दिया है। अभी सुनो, भगवान जबरदस्ती नहीं कर रहे अर्जुन से, भगवान कहते सुनो इस पर पूरी तरीके से मनन करो और जो मन हो वो करो, जो चाहो सो करो। अभी भगवान कहते हैं गुह्यतर तो बताया, अभी गुह्यतम भी सुन लो। सर्व गुह्यतम भूया श्रणु में परमं वचा ष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो इसलिए मैं तुमको अपना परम आदेश बताने जा रहा हूं, जो बहुत गुह्य है वो बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए तुम मुझसे सुन लो। और ये जो श्लोक आप पढ़ने जा रहे हैं 65 नंबर का श्लोक, ये परम गोपनीय ज्ञान है, ये भगवद गीता का सार है। ये श्लोक आपको याद है कि नहीं, 9वें अध्याय में भी ये श्लोक आया था, ऑलमोस्ट यही श्लोक है। खास करके दो लाइन तो वही है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, ये लाइन तो सेम 9वें अध्याय में भी आई हुई है। तो भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैस सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान कहते हैं अर्जुन मन मना, अपने मन को मुझे दे दो, यानी मेरा चिंतन हमेशा करते रहो, और मद भक्तो मेरे भक्त बन जाओ, हाँ, और मद्याजी मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुमको वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हारे हित के लिए यह बात बोल रहा हूं। मैं एक बार बोल चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्यों? तुम्हारे लिए, क्योंकि जब कोई बात रिपीट की जाती है तो ज्यादा समझ में आती है, इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूं, इसको सुनो और ग्रहण करो। अब भगवान ये श्लोक बोलते हैं जो कि सब भक्तों को जो है उत्साह प्रदान करने वाला श्लोक है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग कर दो, मामेकं शरणं व्रज, केवल और केवल मेरी शरण को ग्रहण कर लो। हे अर्जुन अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, जो भी पाप लगेगा तुमको मैं उन सब से तुमको बचा लूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं उन सब से तुम्हारी रक्षा करूंगा, मां सुचा डरो मत। ये श्लोक जो है ये चरम श्लोक बोला जाता है। चरम श्लोक जो है, तीन चरम श्लोक हैं, हम कभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। एक चरम श्लोक ये है जिसमें भगवान अपने भक्त की किस हद तक जा सकते हैं भगवान बता रहे हैं, कह रहे तुम सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण लो, मैं कोई पाप लगने नहीं दूंगा तुमको, मैं गारंटी लेता हूं, डरो मत। पहला एक श्लोक भगवान रामायण में बोलते हैं जब विभीषण उनके शरण लेने के लिए आते हैं, तो उस समय बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे से केवल यह बोल देता है कि हे रघुपति, हे रघुवर, मैं आपके शरण में हूं, तो मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूं, वो मरेगा नहीं कभी, उसको सारा डर खत्म कर देता हूं उसका मैं। एक ये है, और तीसरा एक श्लोक और है, चरम श्लोक बोला जाता है, वो गरुड़ पुराण में आता है, गरुड़ पुराण में या वायु पुराण में है, उसमें बोलते हैं भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है और भक्ति करते करते जब वो अंत में शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ते समय अगर मेरा स्मरण वो नहीं कर पाता है, ध्यान से सुनिए, भगवान कहते हैं अगर वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता है, मैं अपना स्मरण कराने के लिए खुद आता हूं उसके पास। इन तीन श्लोकों को चरम श्लोक बोला जाता है। तो यह चरम श्लोक एक ये भी है, यही भगवान कृष्ण के प्रति जो शरण है वही हनुमान जी ने शरण लिया, भगवान के सारे धर्मों का परित्याग कर दिया और भगवान राम जी की शरण ले लिया। प्रहलाद महाराज उन्होंने भी ऐसा ही किया, हाँ, अर्जुन ने भी यही किया, विभीषण ने भी यही किया, शबरी ने भी यही किया, 12 महाजन है उन सब ने भी यही किया, सारे धर्मों का परित्याग किया, कृष्ण की शरण लिया और उनको कोई पाप नहीं लगा, मोक्ष की प्राप्ति हुई, भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। आपको पता ही होगा कि रावण कुंभकर्ण और विभीषण जो थे उन्होंने तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे, हाँ? तो तपस्या करने के बाद लंका जो थी वो कुबेर जी के पास थी और लंका को रावण ने हत्या लिया था। कुंभकर्ण ने बोला, रावण ने ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मिलेगा, नहीं दे सकता। तो फिर उसने कुछ और मांगा, बोला कि मैं और किसी से ना मरूं, केवल मनुष्यों से और वानरों से मरूं, मनुष्य और बंदर केवल यही मुझे मार सके। उसने सोचा ये लोग तो छोटे छोटे लोग, इनको आराम से मार दूंगा, तो ऐसा करके उसने सोचा। और कुंभकर्ण ने मांगा कि मैं 6 महीने तक सोऊं, 1 दिन जगूं। और विभीषण क्या मांगते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी से विभीषण कहते हैं हे भगवान मैं कठिन परिस्थिति में भी धर्म परायण रहूं। कठिन परिस्थितियां जब हो, खास करके जब रावण माता सीता का हरण करके ले आया, सारे उसके जो मंत्री संतरी थे सब कह रहे थे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। विभीषण उनके खिलाफ बोला, बोला नहीं आपने गलत किया है, और आप जिससे पंगा ले रहे हो जिससे, जिसके अगेंस्ट में जा रहे हो, वो व्यक्ति आपका नाश का कारण बनेगा, वो आपको मार देगा। हाँ, तो रावण ने विभीषण को लात मार दी, बोला जाओ अगर तुम ऐसे हो तो जाओ, तुम मुनि के पास जाओ, उसी के पास जाओ। विभीषण चले गए, तुरंत भगवान के शरण उन्होंने ग्रहण किया, धर्म परायणता को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। तो भगवान इस प्रकार से बताते हैं, अभी एंड है भगवद गीता का, क्लोजिंग। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, सुनो अर्जुन, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रु न चाशु श्रुष्वे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। बोलते हैं ये जो मैंने तुमको भगवद गीता का उपदेश दिया है, ये उपदेश बहुत गुई है, इसलिए इसको ना उन लोगों को ना बताया जाए जो संयमी नहीं है, जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए उन लोगों को ना बताया जाए, जो एकनिष्ठ हैं, जो न तो एकनिष्ठ हैं न भक्ति में रत हैं, उन लोगों को नहीं बताना चाहिए, जो कृष्ण से द्वेष करते हैं उन लोगों को भगवद्गीता का उपदेश नहीं देना चाहिए। और इसके बाद अल्टीमेट श्लोक भगवान बोलते हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्ते सुविधास्यति भक्ति मई परम कृत्वा मामे वैसत्य संशयः। बोलते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, क्या परम रहस्य? भगवत गीता। वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा। तो देखिए, आप लोग जो भी लोग हैं, 15, 16, 17 जो भी हैं, इतने दिनों से ये भगवत गीता का जो ओवरव्यू क्लास चल रहा है उसको आप लोग सुन रहे हैं, काफी ज्ञान आप लोगों को मिला होगा, क्योंकि जो ज्ञान मुझे मिला, मैंने जो सुना वही आप लोगों को आगे पहुंचाया है। तो ये जो ज्ञान है, इसका जो प्रचार करता है भगवान, उसकी बात कर रहे हैं, खास करके भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार करना या भगवद गीता किसी को दान करना, जो उस भगवद गीता को पढ़े, ऐसा व्यक्ति बोलते हैं वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। भगवान इसके बाद और जोर देते हुए कहते हैं कि जो प्रचार करता है वो उसको, उनको कितना प्रिय है। भगवान कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। बोलते हैं, वो व्यक्ति जो मेरे बारे में प्रचार करता है, मेरी भक्ति का प्रचार करता है, भगवद गीता का प्रचार करता है, इस संसार में उससे ज्यादा कोई भी सेवक मुझे प्रिय नहीं है और ना कभी होगा। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतमा भविता, न तो भविष्य में होगा, न च मे तस्माद्, न अभी कोई है। अभी भगवान आगे लास्ट श्लोक बोलते हैं, लास्ट के 2-3 श्लोक भगवान कहते हैं, अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति ते मतिः। बोलते हैं, जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, अभी सुनने का बताया है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो सुनने का भी बहुत फायदा है। ओके, एक श्लोक मैंने छोड़ दिया, सॉरी, मैंने अनुवाद दूसरा बोल दिया। और मैं घोषित करता हूं, 70 नंबर का श्लोक, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। 72 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, क्या तुमने इसको एकाग्र चित्त होकर सुना, जो मैंने तुमको सुनाया, क्या तुमने ध्यान से सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? मैंने इतना तुमको सुनाया, 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, 45 मिनट तक, जो भी टाइम लगा हो उस समय। अभी अर्जुन बोलना शुरू करते हैं, भगवान का प्रवचन खत्म हो गया। अर्जुन वाच, नष्ट मोहम स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा जो मोह था वो खत्म हो गया, मैं मेरा, ये मेरे हैं, ये मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, ये सब सोचा, ये सब खत्म हो गया है, और आपकी कृपा से मुझे स्मृति भी प्राप्त हो गई है, सारा संदेह चला गया है। अभी भगवान ने अर्जुन से कहा था ना, जो करना हो वो करो, मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अर्जुन कहते हैं, करी से वचनम तब, अभी मैं वही करूंगा जो आपने बोला हुआ है, मैं आपको फॉलो करूंगा, आपके आदेश को फॉलो करूंगा। ये बोल के अर्जुन का भी यहाँ पे जो है वचन है, प्रवचन है, वो भी खत्म होता है, अर्जुन के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अभी संजय वापस, संजय के पास पहुंचते हैं हम लोग। संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता यो सवा माम का पांडवश्चैव किम अकुरुत संजया। और संजय जो है उसका उत्तर दे रहे हैं। अभी संजय यहाँ पे 74 नंबर श्लोक में बोलते हैं, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोसम अद्भुतम रोम हर्षणम। बोलते हे धृतराष्ट्र सुनो, मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी है और ये संदेश इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोम हर्षण हो रहा है, रोमांच हो गया है, इतना अच्छा मुझे लग रहा है, इतना मैं रोमांचित हो गया, बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूं। अभी वो याद करते अपने गुरु को, बोलते हैं व्यास प्रसादाच्युतवाना एतद् गुह्यम अहम् परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। बोलते हैं कि व्यास की कृपा से ये परम गुह्य बातें मैंने साक्षात कृष्ण के मुख से सुनी है, जो कि अर्जुन को वो बोल रहे थे। ये व्यास देव की कृपा है, मैं इस टेलीविजन में पूरा देख पा रहा था। हाँ, व्यास का उनको आशीर्वाद था, वो महाभारत में जो कुछ भी हो रहा था उनको दिखाई दे रहा था। तो बोलते हैं व्यास देव की कृपा से मैंने सब कुछ सुना है, स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से सुना है। और सुनो, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक और पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं, मैं प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। बार बार मुझे इतना आह्लाद आता है, इतना अद्भुत संदेश भगवान ने दिया है, उससे मैं गदगद हो जाता हूं, मैं रोमांचित हो जाता हूं, मेरा हृदय खिल उठता है। इसलिए तच्च संस्मृत्य संस्मृत्या रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः। बोलते हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित हो जाता हूं और बार बार हर्षित हो रहा हूं, बार बार मुझे हर्ष होता है। और अंत में भगवद गीता का अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का 78 नंबर का श्लोक, भगवान ये अर्जुन संजय बोलते हैं, कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानि तिरमतिर मम। बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण का नाम है योगेश्वर और शिव जी का नाम है योगीश्वर, ये अंतर जानिए। योगेश्वर यानी योग के ईश्वर और वो योगियों के ईश्वर है। तो बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहां योगेश्वर कृष्ण है, और यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां पे परम धनुर्धारी अर्जुन है, वहां क्या क्या रहता है? बोलते हैं तत्र श्री विजयो, श्री रहती है, ऐश्वर्य वहां रहता है, विजयो विजय वहां पर रहती है, और भूति विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम, वहां अलौकिक शक्ति रहती है और नीति भी वहां पर रहती है। हाँ, ध्रुवा ऐसा मेरा मत है। तो इस प्रकार से भगवान और अर्जुन के मध्य ये जो अत्यंत अद्भुत श्रीमद् भगवद गीता का जो आदान प्रदान हुआ, अर्जुन के प्रश्न भगवान के उत्तर, और इतना सुंदर इतना विशद ज्ञान, जो कि वेदों में भी अगर कोई वेदों को लेके भी पढ़ेगा तो उनको समझ नहीं पाएगा, उस ज्ञान को भगवान ने इस भगवद गीता रूपी छोटे ग्रंथ में उन्होंने दे दिया है, ये वास्तव में हमारा बहुत सौभाग्य है। अब देखिए, आपको यहाँ पे मैं एक विशेष बात बता के सेशन को एंड करना चाहूंगा, वो ये है, इस भगवद गीता को संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। अभी 10वां दिन चल रहा था युद्ध का, उस दिन ये सुनाया है। तो इस अध्याय को सुनाने के बाद भी धृतराष्ट्र पे कोई फर्क नहीं पड़ा। धृतराष्ट्र कृष्ण का जो विराट रूप था उसको देखा संजय के आंखों से, संजय ने जैसा बताया उसने देखा, समझा, सुना सब कुछ, लेकिन धृतराष्ट्र पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दुर्योधन को समझाया नहीं, युद्ध रोक सकता था लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो जो श्रद्धालु लोग हैं, अगर हम उनको सुनाएंगे तो ये भगवद्गीता का जो कार्य है, भगवद्गीता अपना कार्य करेगी, यानी वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा अंत में। लेकिन अगर कोई अश्रद्धालु व्यक्ति को सुनाएंगे तो इसका कोई भी फर्क पड़ने वाला उसके ऊपर नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि उसको मत सुनाओ। भगवान ने खुद ही बोला, कौन सा श्लोक, हाँ 67 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ये गुह्य ज्ञान उसको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रहता है, और ना ही उसे बताया जाए जो मुझसे द्वेष करता है। उन लोगों के लिए ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान जो है भक्तों के लिए है, जो संयमी लोग हैं उनके लिए ये ज्ञान है। अभी आज ये सेशन हमारा जो 18 अध्याय का ओवरव्यू था, हमने जो एक बृहद संकल्प लिया था, इतना बड़ा संकल्प था, मेरे लिए वास्तव में बहुत बड़ा संकल्प था, आप लोग तो सुन रहे थे, पर मैं इसको प्रिपेयर करता था बार बार, जो है इसमें जो भी समय गया, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद जी की बुक जिसमें ये समझने को मिला, भगवान का जो ज्ञान अर्जुन को भगवान ने जो दिया है उसको सरल भाषा में, और साथ साथ में हिजगेस राधे श्याम प्रभु जिनके लेक्चर्स मैंने सुने ओवरव्यू के, और जिसके जिनकी PPT भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, तो वो दोनों खास करके राधे श्याम प्रभु उनका भी मैं बहुत आभार प्रदान कर आभार देता हूँ कि उनके कृपा से उनका सुन के मैं ये आप लोगों तक पहुँचा पाया। जो भी तो जो भी मैंने कुछ बोला इतने दिनों में वो सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से बोल पाया, तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ये कहकर मैं जो है भगवद्गीता का ये जो 18 अध्याय का जो ओवरव्यू है वो क्लास में यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।